हे ब्राह्मण, लोमसी ने इंद्र के वचनानुसार पांडुपुत्र युधिष्ठिर से जो ये महत्वपूर्ण वाक्य कहा था कि तुम्हें जो बड़ा भारी भय लगा रहता है और जिसकी तुम किसी के सामने चर्चा भी नहीं करते हो, उसे भी अर्जुन के स्वर्ग में आने पर मैं दूर कर दूंगा। सो वैशंपायन जी, महात्मा युधिष्ठिर को कर्ण से कौन सा बड़ा भारी भय था जिसकी वह किसी के आगे बात भी नहीं चलाते थे? कर्ण से भय था युधिष्ठिर। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, तुम पूछ रहे हो, मैं कथा सुनाता हूं, सावधानी से सुनो। जब पांडवों के वनवास के 12 वर्ष बीत गए और 13वां वर्ष का प्रारंभ हुआ, पांडवों के हितेशी इंद्र कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगने को तैयार हुए। जब सूर्यदेव को इंद्र का ऐसा विचार मालूम हुआ कि वे कर्ण के पास आए, तो वे कर्ण के पास आए, सूर्य आए, सूर्य का पुत्र था ये कर्ण। इंद्र आया उसका कवच और कुंडल लेने के लिए ब्राह्मण बनकर के। सूर्यदेव को इंद्र का ऐसा विचार मालूम हुआ तो वे कर्ण के पास आए। ब्राह्मण सेवी और सत्यवादी वीरवर कर्ण अत्यंत निश्चिंत होकर एक सुंदर बिछोने वाली बहुमूल्य सेज पर सोए हुए थे। सूर्यदेव पुत्र स्नेहवश अत्यंत दयार्द्र होकर वेद वेत्ता ब्राह्मण के रूप में स्वप्नावस्था में उनके सामने आए और उनके हित के लिए समझाते हुए कहने लगे। स्वप्न में आए सूर्यदेव, हे सत्यवादियों में श्रेष्ठ महाबाहु कर्ण, मैं स्नेहवश तुम्हारे परम हित की बात कहता हूं, उस पर ध्यान दो। देखो, पांडवों का हित करने की इच्छा से देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे पास कवच और कुंडल मांगने के लिए आएंगे। वे तुम्हारे स्वभाव को जानते हैं और सारे संसार को भी तुम्हारे इस नियम का पता है कि किसी सत्पुरुष के मांगने पर तुम उसको उसकी अभीष्ट वस्तु दे देते हो और स्वयं कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, किंतु यदि तुम अपने जन्म के साथ उत्पन्न हुआ ये कवच और कुंडल दे दोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी और तुम्हारे ऊपर मृत्यु का अधिकार हो जाएगा। तुम सच मानो, जब तक तुम्हारे पास ये कवच और कुंडल रहेंगे, युद्ध में कोई भी तुम्हें नहीं मार सकता। ये रत्नमय कवच कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यदि तुम्हें प्राण प्यारे हैं तो इनकी अवश्य रक्षा करना। कर्ण ने पूछा, हे भगवान, आप मेरे प्रति इतने संवेदनशील होकर उपदेश दे रहे हैं, क्या कारण है? बताइए, आप ब्राह्मण वेश में कौन है? स्वप्न में ही बातें हो रही है। ब्राह्मण ने कहा, हे तात, मैं सूर्य हूं, मैं स्नेहवश ही तुम्हें सम्मति दे रहा हूं, तो मेरी बात मानकर ऐसा ही करो, इसी में तुम्हारा विशेष कल्याण है। कर्ण बोले, जब स्वयं भगवान भास्कर ही मुझे मेरे हित की इच्छा से उपदेश दे रहे हो तो मेरा परम कल्याण तो निश्चित ही है, किंतु आप मेरी यह प्रार्थना सुनने की कृपा करें। आप वरदायक देव हैं, आपको प्रसन्न रखते हुए मैं प्रेम पूर्वक ही निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप मुझे प्यार करते हैं तो मुझे इस व्रत से विचलित न करें। मेरा जो व्रत है, जो मांगे सो दे दें, ये व्रत मेरा रहने दीजिए, इसे विचलित न करें। हे सूर्यदेव, संसार में मेरे इस व्रत को सभी लोग जानते हैं कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मांगने पर अपने प्राण तक दान कर सकता हूं। यदि देव श्रेष्ठ इंद्र पांडवों के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए आएंगे तो मैं उन्हें अपने ये दिव्य कवच और कुंडल अवश्य दे दूंगा। इससे तीनों लोकों में मेरा जो नाम हो रहा है उसमें बट्टा नहीं लगेगा। मेरे जैसे लोगों को यश की रक्षा करनी चाहिए, प्राणों की नहीं। संसार में मरना तो है ही, यशस्वी होकर मरो, अपमानित होकर क्यों मरो। सूर्य ने कहा, अरे कर्ण, तुम देवताओं की गुप्त बातें नहीं जान सकते, इसलिए इसमें जो रहस्य है वह मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। समय आने पर तुम्हें वह स्वयं मिल रहस्य का मालूम हो जाएगा, किंतु मैं तुमसे फिर भी यह कहता हूं कि तुम मांगने पर भी इंद्र को अपने कवच कुंडल मत देना, क्योंकि इन कुंडलों से युक्त रहने पर तो अर्जुन और उसका सखा स्वयं इंद्र भी तुम्हें युद्ध में परास्त करने में समर्थ नहीं है। इसलिए यदि तुम अर्जुन को जीतना चाहते हो, ये दिव्य कुंडल इंद्र को कदापि मत देना। कर्ण ने कहा, सूर्यदेव, आपके प्रति मेरी जैसी भक्ति है वह आप जानते ही हैं, तथा ये बात भी आपसे छिपी नहीं है कि मेरे लिए अधिक कुछ भी नहीं है। भगवान, आपके प्रति मेरा जैसा अनुराग है वैसा प्रेम तो मेरा अपनी स्त्री पुत्र शरीर और सुहृदों के प्रति भी नहीं है। इसमें भी संदेह नहीं है कि महानुभावों का अपने भक्तों पर अनुराग रहा ही करता है। तय इस नाते से आप जो मेरे हित की बात कह रहे हैं उसके लिए मैं आपको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं, और आपको प्रसन्न रखते हुए बार बार यही प्रार्थना करता हूं कि आप मेरा अपराध क्षमा करें और मेरे इस व्रत का अनुमोदन करें, जिससे कि याचना करने पर मैं इंद्र को अपने प्राण भी दान कर सकूं। सूर्य बोले, कर्ण, तुम्हारी दान वृत्ति के लिए मैं आनंदित तो हुआ हूं, परंतु एक बात और कह देता हूं। यदि तुम अपने ये दिव्य कवच और कुंडल दो ही, तो अपनी विजय के लिए उनसे ये प्रार्थना करना कि हे देवराज, आप मुझे अपनी शत्रुओं का संहार करने वाली अमोघ शक्ति दीजिए, तब मैं आपको कवच कुंडल दूंगा। महाबाहो इंद्र की वह शक्ति बड़ी प्रबल है, जब तक वह सैकड़ों हजारों शत्रुओं का संहार नहीं कर लेती तब तक छोड़ने वाले के हाथ में लौट कर ही नहीं आती। ऐसा कहकर सूर्य भगवान अंतरित हो गए। दूसरे दिन जब समाप्त होने के अनंतर कर्ण ने ये सब बातें सूर्य नारायण से कही। उन्हें सुनकर भगवान भास्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, उसने यूं, उसको क्या मालूम ये सूर्य है। सूर्य भगवान से कही, सूर्य भगवान ने कहा, ये कोरा स्वप्न नहीं है, सब सच्ची घटना है। साक्षात मैं ही ब्राह्मण के रूप में आया था, और उस समय भी मैंने तुम्हें कहा था कि मैं सूर्य हूं, और अभी भी मैं कह रहा हूं कि मैं सूर्य मैं ही था। तब कर्ण भी उन बातों को ठीक समझकर शक्ति पाने की इच्छा से इंद्र की प्रतीक्षा करने लगे। जन्मेजय ने कहा, हे मुनिवर, सूर्यदेव ने जो गुह्य बात कर्ण को नहीं बताई वो क्या बात थी। सूर्य ने कहा कि देवता लोग कई गुप्त बातें रखा करते हैं, बताते नहीं है, वो कौन सी गुप्त बात छिपाई थी। कर्ण के पास जो कवच और कुंडल थे वे कैसे थे और कहां से प्राप्त हुए थे, ये मैं सुनना चाहता हूं। वैशंपायन जी बोले, राजन, मैं तुम्हें सूर्यदेव की गुप्त बात बताता हूं, और वो भी सुनाता हूं कि कवच कुंडल कैसे थे। पुराने समय की बात है, एक बार राजा कुंती भोज के पास एक महान तेजस्वी ब्राह्मण आया उसका शरीर बहुत ऊंचा था तथा मूंछ दाढ़ी और सिर के बाल बढ़े हुए थे। बड़े दर्शनीय भव्य मूर्ति था। हाथ में दंड लिए हुए था। उसका शरीर तेज से दमक रहा था और मधु के समान पिंगल वर्ण था। वाणी बड़ी मधुर थी। तप और स्वाध्याय उसके आभूषण थे। उन ब्राह्मण देवता ने राजा से कहा, राजन, मैं आपके घर भिक्षा मांगने के लिए आया हूं, किंतु आपको या आपके सेवकों को मेरा कोई अपराध नहीं करना होगा। यदि आपकी रुचि हो तो इस प्रकार मैं आपके यहां रहूंगा और इच्छा अनुसार आता जाता रहूंगा। तब राजा कुंती भोज ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, महामते, मेरी प्रथा नाम की एक कन्या है, बड़ी सुशीला, सदाचारिणी, संयमशीला और भक्तिमती है। वही पूजा और सत्कार पूर्वक आपकी सेवा करेगी। आपके शील सदाचार से आपको अवश्य संतोष होगा। उसके शील सदाचार से आपको अवश्य संतोष होगा। ऐसा कहकर राजा ने विधिवत ब्राह्मण देवता का सत्कार किया और विशाल नैना प्रथा के पास जाकर कहा, बेटी, ये महाभाग ब्राह्मण देवता हमारे यहां ठहरना चाहते हैं और मैंने तुझ पर पूरा भरोसा रखकर इनकी बात स्वीकार कर ली है। अतः किसी भी प्रकार मेरी बात को झूठी मत होने देना। ये जो कुछ मांगे वही चीज बिना अनखाए देती रहना। ब्राह्मण परम तेजोरूप और परम तपस्वरूप होता है। ब्राह्मणों को नमस्कार करने से ही सूर्यदेव आकाश में प्रकाशित होते हैं। बेटी, उन ब्राह्मण देवता का परिचर्या का भार भी तुम्हारे पर है। तुम नियम पूर्वक नित्य प्रति सेवा में रहना। पुत्री, मैं जानता हूं कि तेरा बचपन से ही ब्राह्मणों के, गुरुजनों के, बंधुओं के, सेवकों के, मित्र संबंधी और माताओं के तथा मेरे प्रति सब प्रकार आदर युक्त बर्ताव रहा है। इस नगर में अथवा अंतपुर में ऐसा कोई पुरुष नहीं जान पड़ता जो तुझसे असंतुष्ट हो। तू वृष्णि वंश में उत्पन्न हुई सूरसेन की लाडली कन्या है। तुझे बचपन में ही प्रीति पूर्वक राजा सूरसेन ने मुझे दत्तक रूप से दिया था। तू वसुदेव जी की बहन है और मेरी संतानों में सर्वश्रेष्ठ है। राजा सूरसेन ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी प्रथम संतान में आपको गोद दे दूंगा। उस प्रतिज्ञा के अनुसार उनके देने से तू मेरी बेटी है। तो बेटी, तो दर्प दंभ अभिमान को छोड़कर वरदायक ब्राह्मण देवता की सेवा करोगी तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस पर कुंती ने कहा, राजन, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं बहुत सावधान रहकर इन ब्राह्मण देवता की सेवा करूंगी। ब्राह्मणों की पूजा करना तो मेरा स्वभाव है। इससे आपका प्रिय और मेरा परम कल्याण होगा। ये चाहे सायंकाल में आवे, चाहे सवेरे आवे, चाहे रात में आवे, चाहे आधी रात के समय आए, मैं किसी प्रकार इनको कुपित होने का अवसर ही नहीं दूंगी। इसमें तो मेरा बड़ा लाभ है कि आपकी आज्ञा में रहकर ब्राह्मणों की सेवा करते हुए अपना कल्याण करूं। कुंती के ऐसा कहने पर राजा कुंती भोज ने उसे बार बार हृदय से लगाया और उसे उत्साहित करते हुए सारा कर्तव्य समझा दिया। राजा ने कहा, ठीक है कल्याणी, तुझे निशंक होकर ऐसा ही करना चाहिए। उससे ऐसा कहकर परम यशस्वी कुंती भोज ने ब्राह्मण देवता को वह कन्या सौंप दी और उनसे कहा, राजन, मेरी ये कन्या छोटी आयु की है। मैंने इसे बहुत सुख में पाला है। यदि इससे कोई अपराध हो जाए तो इस बच्ची को क्षमा कर देना। आप कोई ध्यान न देना। आप जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, बालक, तपस्वी और बूढ़े आदमी के द्वारा कोई अपराध होता है तो क्षमा ही क्या करते हैं, क्रोध नहीं करते। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। इसके पश्चात राजा ने उन्हें प्रसन्न होकर हंस और चंद्रमा के समान श्वेत प्रासाद में ले जाकर रखा। वहां अग्निशाला में उनके लिए एक तेजस्वी आसन बिछाया। पूरी उदारता से भोजन आदि का सब प्रबंध कर दिया। राजपुत्री प्रथा भी आलस्य और अभिमान को एक ओर रखकर उसकी परिचर्या में दत्तचित्त होकर लग गई। उसका आचरण बड़ा सराहनीय था। उसने शुद्ध मन से सेवा करके उस तपस्वी ब्राह्मण को पूर्णतया प्रसन्न कर लिया। उनकी झिड़कने पर भी, भरा बुरा कहने पर भी, डांटने पर भी, अप्रिय भाषण करने पर भी प्रथा उनको अप्रिय लगने वाला काम नहीं करती थी, वचन भी नहीं निकालती थी, चेहरे पर कोई सिनक भी नहीं आने देती थी। उन ऋषि का व्यवहार बड़ा अटपटा था। वे भी कभी अनियमित समय पर सोते, कभी आते ही नहीं, कभी ऐसा भोजन मांगते जिसका मिलना बड़ा कठिन होता, ये नहीं ये लाओ, ये नहीं ले आ लाओ। प्रथा उनके सब काम सब प्रकार से तैयार कर देती, मानो उसको पहले से ही कोई जानकारी हो, ये चीज मांगेंगे तो अब ये चीज लो। उसके शील स्वभाव और संयम से ब्राह्मण को बड़ा संतोष हुआ। बहुत डांटने पर वो बच्ची थोड़ी सी मुस्कुराकर आदर के साथ ही ब्राह्मण को बोलती थी, तो उनका सारा क्रोध दूर हो जाता था। इधर राजा कुंती बोझ सायंकाल और सवेरे दोनों समय अपनी बेटी से पूछा करते कि बेटी, ब्राह्मण देवता तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है ना? यशस्विनी प्रथा उन्हें यही उत्तर देती कि वे खूब प्रसन्न है। इससे उदार चित्त कुंती बोझ को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार एक वर्ष पूरा हो गया। जब उन विप्रवर को प्रथा का कोई दोष नहीं दिखाई दिया तो बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, कल्याणी, तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। तुम मुझसे ऐसे वर मांग ले जो इस लोक में मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। तब कुंती ने कहा, हे विप्रवर, आप वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आप और पिताजी मुझ पर बड़े प्रसन्न हैं। मेरे सब काम तो आपकी कृपा और प्रसन्नता से यूं ही सफल हो गए। अब तो मुझे कुछ वर मांगने की जरूरत ही नहीं है। आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिए वरदान है। ब्राह्मण ने कहा, हे भद्रे, कितनी ऊंची बात बोलती है। यदि तू वर नहीं मांगती है तो मैं अपनी तरफ से वरदान देता हूं। देवताओं का आह्वान करने के लिए मुझसे ये मंत्र ग्रहण कर ले। तू इस मंत्र से जिस देवता का आह्वान करेगी वही तेरे अधीन हो जाएगा। उसकी इच्छा हो या न हो, इस मंत्र के प्रभाव से वह शांत होकर सेवक के समान तेरे आगे विनय भाव से खड़ा रहेगा और जो कहेगा वो करेगा, जो कहोगी वो करेगा। ब्राह्मण देवता के ऐसा कहने पर अनिंदिता प्रथा साप के भय से दूसरी बार उसने मना नहीं किया, क्या पता साप दे दे। तब उन्होंने उसे अथर्ववेद शिरोभाग के आए हुए मंत्र का उपदेश दिया। प्रथा को मंत्र दान करके उन्होंने कुंती भोज से कहा, राजन, मैं तुम्हारे यहां बड़े सुख से रहा, जिसमें तुम्हारी कन्या ने मुझे सब प्रकार से संतुष्ट रखा। अब मैं जा रहा हूं और बड़ा प्रसन्न होकर जा रहा हूं। ऐसा कहकर वे वही अंतर्धान हो गए। उन ब्राह्मण देवता के चले जाने पर वह कन्या मंत्रों के बलाबल के विषय में विचार करने लगी कि मंत्र हैं, देखें तो सही क्या है। उसने सोचा, उन महात्मा जी ने मुझे कैसे मंत्र दिए हैं, मैं इनकी परीक्षा करूं। एक दिन वह महल पर खड़ी हुई उदित होते हुए सूर्य की ओर देख रही थी। उस समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गई और उस दिव्य रूप कवच कुंडलधारी सूर्य नारायण के दर्शन होने लगे। उस समय उसके मन में ब्राह्मण के दिए हुए मंत्रों की परीक्षा का कौतूहल हुआ। उसने विधिवत आचमन और प्राणायाम करके सूर्य देव का आह्वान किया। इससे तुरंत ही वे उसके पास आ गए। उनका शरीर मधु के समान पिंगल वर्ण, भुजाएं विशाल, ग्रीवा शंख के समान, मुख पर मुस्कान, भुजाओं पर बाजूबंद, सिर पर मुकुट तथा तेज से सारा शरीर दे दीप्यमान था। वे अपनी योग शक्ति से दो रूप धारण कर एक से संसार को प्रकाशित कर रहे थे और दूसरे रूप से वे प्रथा के पास आए थे। उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से कुंती से कहा, भद्रे तेरे मंत्र की शक्ति से मैं बलात् तेरे अधीन हो गया हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। अब तुम जो चाहोगी वही मैं करने के लिए तैयार हूँ। कुंती ने कहा, भगवान आप जहाँ से आए हैं वहीं पधार जाइए। एक ऋषि ने मुझे मंत्र दिए थे, मैंने कौतूहल से आपका आह्वान किया था, यदि आपको कोई कष्ट हुआ हो तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। सूर्य बोले, तन्वी तुम मुझसे जाने की बात कहती है तो मैं चला तो जाऊंगा, परंतु देवता का आह्वान करके उसे बिना कोई प्रयोजन सिद्ध किए लौटा देना ये न्यायानुकूल नहीं है। सुंदरी तेरी जैसी इच्छा थी, तेरी ऐसी इच्छा थी कि सूर्य से मेरे पुत्र हों, वह लोक में अतुलित पराक्रमी हों, कवच कुंडल धारण किए हों, बता तेरे अंदर इच्छा थी कि नहीं। अतः तू मुझे अपना शरीर समर्पित कर दे, इससे तेरे जैसा तेरा संकल्प था वैसा ही पुत्र हो जाएगा। कुंती बोली, रश्मालिन आप अपने विमान पर बैठकर पधारिए, अभी मैं कन्या हूं इसलिए ऐसा अपराध करना मेरे लिए बड़े दुख की और लज्जा की बात होगी। मेरे माता पिता और दूसरे गुरुजन हैं, उन्हें ही इस शरीर को दान करने का अधिकार है, मैं धर्म का लोप नहीं करूंगी। लोक में स्त्रियों के सदाचार की पूजा होती है, ये सदाचार अपने शरीर को अनाचार से सुरक्षित रखना ही है। मैंने मूर्खता से मंत्र के बल की परीक्षा करने के लिए आपका आह्वान किया, मुझे बालिका जानकर आप अपराध क्षमा करें, मैं बच्ची हूं। सूर्य ने कहा, भीरू तुम बालिका है इसलिए मैं तेरी खुशामद कर रहा हूं, किसी दूसरी स्त्री की मैं विनय नहीं करता हूं। तुम मुझे अपना शरीर दान कर दे, इससे तुझे शांति मिलेगी। कुंती बोली, देव मेरे माता पिता अन्य संबंधी जीवित हैं, उनके रहते हुए सनातन विधि का लोप नहीं होना चाहिए। यदि आपके साथ मेरा ये शास्त्र विधि से विपरीत समागम हुआ तो मेरे कारण संसार में इस कुल की कीर्ति नष्ट हो जाएगी, और यदि आप इसे धर्म मानते हैं तो अपने बंधुजनों के दान न करने पर मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ, दान न करने पर भी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ, किंतु आपको दुष्कर आत्मदान करने पर भी मैं सती ही रहूं, क्योंकि संसार में प्राणियों की धर्म यश कीर्ति और आयु आप ही के ऊपर निर्भर है। सूर्य ने कहा, सुनो सुंदरी मैं देवता हूं, देवताओं का मानवीय शरीरों के साथ जो संयोग होता है वो मानवीय तरीके से नहीं होता है। देवता केवल संकल्प किया करते हैं और उस संकल्प से तुम्हारा अधर्म का आचरण नहीं होगा। कुंती बोली, यदि ऐसी बात है तो आप जो अजय उत्पन्न करें वैसा आप संकल्प कीजिए। सूर्य ने कहा, मेरी माता अदिति से मुझे जो कुंडल और कवच मिले हैं वो मैं मेरे संकल्प से तुम्हारे यहाँ पैदा होने वाले बालक को दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं कि भगवान भास्कर ने अपने योग शक्ति से अपना संकल्प किया और उसका कन्यात्व दूषित नहीं किया, और अपने संकल्प के प्रभाव से उन्हें गर्भाधान होने पर सचेत कर दिया, और माघ शुक्ला प्रतिपदा के दिन प्रथा के गर्भ में स्थापित हुआ और वो अंतःपुर में रहने वाली एक धाय के सिवा किसी स्त्री को इसका पता नहीं चला, पुत्र बड़ा हुआ। सुंदरी प्रथा ने यथा समय एक देवता के समान कांतिमान बालक उत्पन्न किया तथा सूर्य की कृपा से वह कन्या की कन्या भी बनी रही। वह बालक गर्भ के अंदर जैसे और बढ़ते हैं ऐसा नहीं बढ़ा, क्योंकि वो सूर्य का संकल्पज पुत्र था, अतः उसका कन्यात्व दूषित नहीं हुआ। वह बालक अपने पिता के समान शरीर पर कवच और कानों में कुंडल पहने हुए था। उसके नेत्र सिंह के समान, कंधे बैल के से, पिता ने धात्री से सलाह लेकर एक पिटारी मंगाई और उसमें अच्छी तरह से कपड़े बिछाए और ऊपर चारों ओर मोम चौपड़ दिया। फिर उसमें उस नवजात शिशु को लिटाकर ऊपर से ढक्कन लगाकर अश्व नदी में छोड़ दिया। उस पिटारी को जल में छोड़ते समय कुंती ने रो रो करके जो शब्द कहे थे, बेटा नवचर स्थलचर जलचर जीव तथा दिव्य प्राणी सदा तेरा मंगल करे, तेरा मार्ग मंगलमय हो, तुझे कोई शत्रुओं से विघ्न न हो, जल में जल के स्वामी वरुण तेरी रक्षा करे, आकाश में सर्वगामी पवन तेरी रक्षा करे, तेरे पिता सूर्यदेव तेरी सर्वत्र रक्षा करे, तू कभी विदेश में भी मिलेगा तो इन कवच और कुंडलों से मैं तुझे पहचान लूंगी। प्रथा ने इस प्रकार कहकर करुणापूर्वक बहुत विलाप किया और अत्यंत व्याकुल होकर राजमहल में लौट आई। वह पिटारी तैरती तैरती अश्व नदी से चर्मणवती नदी में गई और उससे यमुना में पहुंच गई। फिर यमुना में से बहती बहती गंगा जी में चली गई वही पिटारी। यमुना नदी के किनारे एक अधीरथ नाम का सूत रहता था। उस चंपापुरी में वह पिटारी आई। इसी समय राजा धृतराष्ट्र का मित्र अधीरथ अपनी स्त्री के साथ गंगा के तट पर घूमने के लिए गया था। उसकी स्त्री राधा संसार में अनुपम रूपवती थी, किंतु उसके कोई बेटा नहीं था, इसलिए वह पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से यत्न करती रही। देवयोग से उसकी दृष्टि गंगा जी में बहती हुई पिटारी पर पड़ी। जब वह गंगा के तरंगों से टकराकर किनारे पर पिटारी लग गई तो उसने कौतूहलवश अधीरथ से कहकर उसे जल से बाहर निकलवाया। जब उसे औजारों से खुलवाया तो उसमें एक तरुण सूर्य के समान तेजस्वी बालक दिखाई दिया। सोने का कवच पहना हुआ था और मुख उज्जवल कुंडलों से कांति से दीप्तिमान था। अभी बच्ची की आंखें बंद थी और बहुत छोटा, बड़ा सुंदर, बड़ा स्वरूपवान। उसको देखकर अधीरथ और उसके स्त्री दोनों ही आश्चर्य में डूब गए और प्रसन्नता से उनके नेत्र खिल उठे। अधीरथ ने उसे गोद में लेकर अपनी स्त्री से कहा, प्रिय मैंने जब से जन्म लिया है तब से आज ही ऐसा विचित्र बालक देखा है, आज तक मैंने ऐसा बालक नहीं देखा। मैं समझता हूं ये मानव पुत्र नहीं है, ये कोई देवताओं का बालक है जो हमारे पास आया है, कोई देवताओं ने कृपा की है। मैं पुत्रहीन था इसलिए अवश्य देवताओं ने मुझे पुत्र दिया है। ऐसा कहकर उस बालक को राधा की गोद में दिया तथा राधा ने दिव्य रूप देव शिशु को, जो कमल कोष के समान संपन्न था, विधिवत ग्रहण किया और बड़े स्नेह से उसका पालन करने लगे। वह बालक बड़ा पराक्रमी बड़ा होने लगा। तब से अधीरथ के औरस पुत्र भी होने लग गए। उस बालक को वसुवर्म और सुवर्णमय कुंडल पहने देखकर ब्राह्मणों ने उसका नाम वसुसेन रखा। इस तरह वह अतुलित पराक्रमी बालक सूत पुत्र कहलाया और वसुसेन या वृष नाम से भी विख्यात हुआ। कर्ण दिव्य कवचधारी होने से प्रथा ने भी दूतों के द्वारा मालूम करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अंगदेश में एक सूत के घर पल रहा है। अधिरथ ने जब देखा कि अब यह बड़ा हो गया है तो इसे विद्योपार्जन के लिए हस्तिनापुर भेज दिया, जहां द्रोणाचार्य के पास रहकर ये अस्त्र विद्या सीखने लगा। इस प्रकार दुर्योधन के साथ उसकी मित्रता हो गई। उसने द्रोण, कृपाचार्य और परशुराम जी से चारों प्रकार के अस्त्रों का संचालन सीखा। इस प्रकार महान धनुर्धर होकर संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध हो गया। वह दुर्योधन से मेल करके सर्वदा पांडवों का अप्रिय करने में तत्पर रहता था और सदा ही अर्जुन से युद्ध करने की टोह में रहता था। राजन, निस्संदेह यही सूर्यदेव की गुप्त बात थी कि कर्ण का जन्म सूर्य के द्वारा कुंती से हुआ था और पालन सूत परिवार में हुआ था। कर्ण को कवच कुंडल युक्त देखकर महाराज युधिष्ठिर उसे युद्ध में अवध्य समझते थे और इसी से उन्हें चिंता रहती थी। महाराज, कर्ण मध्याह्न के समय जल में खड़े होकर हाथ जोड़कर स्तुति करते थे, उस समय ब्राह्मण लोग धन पाने की इच्छा से उसके आसपास लगे रहते थे, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो ब्राह्मणों को न दे सके। एक दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास आए और बोलने लगे, भिक्षाम देही। इस पर कर्ण ने कहा, पधारिए, आपका स्वागत है, कहिए, मैं आपको सुवर्ण विभूषिता स्त्रियां दूं या बहुत सी गौवें दूं या कोई गांव दूं, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्राह्मण ने कहा, इनकी मुझे इच्छा नहीं है, यदि आप वास्तव में सत्य प्रतिज्ञ हैं तो आपके जो ये जन्म के साथ उत्पन्न हुए कवच और कुंडल है यही उतार देकर हमको यही उतार कर हमें दे दीजिए। आपसे मुझे इन्हीं के लेने की बहुत उतावली है, मेरे लिए यह सबसे बढ़कर लाभ की बात होगी। कर्ण ने कहा, विप्रवर, मेरे साथ उत्पन्न हुए ये कवच और कुंडल अमृतमय है, इनके कारण तीनों लोकों में मुझे कोई नहीं मार सकता, इसलिए इन्हें मैं अपने से विलग करना नहीं चाहता हूं। इसलिए आप मुझसे विस्तृत और शत्रुहीन पृथ्वी का राज्य लो। कवच और कुंडल को देकर तो मैं शत्रुओं का शिकार हो जाऊंगा। जब ऐसा कहने पर भी इंद्र ने दूसरा वर नहीं मांगा तो कर्ण ने हंसकर कहा, देवराज इंद्र, मैं पहले से ही आपको पहचान गया हूं। मैं आपको कोई वस्तु दूं और उसके बदले में मुझे कुछ भी न मिले, यह उचित नहीं है। जो विशुद्ध ब्राह्मण होते हैं उनसे बदले में कुछ नहीं चाहना चाहिए। आप तो केवल ब्राह्मण का स्वांग किए हैं, है तो आप इंद्र ना, इसलिए आपसे मैं वापिस भी कुछ मांगने का अधिकारी होता हूं। हे देववर, आपको भी मुझे कोई वरदान देना चाहिए। आप अनेकों अन्य जीवों के स्वामी और उनके रचना करने वाले हैं। देवेश्वर, यदि मैं आपको कवच और कुंडल दे दूंगा तो फिर शत्रु लोग मुझे मार देंगे। इसमें आपकी भी हंसी होगी कि इंद्र ने छल करके कर्ण के साथ ब्राह्मण बनकर कवच कुंडल मांग लिए, आपकी भी अपकीर्ति होगी। इसके लिए आपको चाहिए कि कोई बदला देकर आप भले ही दिव्य कवच कुंडल ले जाइए, और किसी प्रकार से मैं आपको ये नहीं दे सकता। इंद्र ने कहा, मैं तुम्हारे पास आने वाला हूं, यह बात सूर्य को मालूम हो गई थी, निस्संदेह सूर्य ने तुम्हें सब बात बता दी, तभी तो तुम इतनी बातें बोलते हो। कोई बात नहीं, तुम जैसा चाहते हो हम वैसा ही सही। एक वज्र को छोड़कर मुझसे कोई चीज मांग लो, मेरे पास तो बहुत शस्त्र है। एक वज्र को छोड़कर कर्ण बोले, इंद्रदेव आप इन कवच और कुंडल के बदले में मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे देंगे? आपको मालूम है जो संग्राम में अनेक शत्रुओं का संहार कर देने वाली है। तब शक्ति के विषय में कई देर तक विचार करने के बाद इंद्र ने कहा, तुम मुझे अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए कवच और कुंडल दे दो और मुझसे मेरी शक्ति ले लो, हम तैयार हैं। किंतु एक शर्त है। क्या? वह यह है कि मेरे हाथ से छूटने पर यह शक्ति अवश्य ही सैकड़ों शत्रुओं का संहार करती है और फिर मेरे में लौट आती है। सो जब ये तुम्हारे हाथ से छूटेगी तो गरज गरज कर तुम्हें अत्यंत संतप्त कर रहा होगा, ऐसे एक ही प्रबल शत्रु को मारकर फिर ये मेरे हाथ में वापस आ जाएगी, फिर तुम्हारे पास नहीं जाएगी। कर्ण ने कहा, देवराज मेरा तो इस धरती पर शत्रु है तो वो एक ही है, और एक पर यदि इसका प्रहार हो जाएगा बस मेरा तो काम हो गया। वही मुझे युद्ध में घोर युद्ध में गरज गरज कर संतप्त कर रहा होगा, ठीक है, उसी से ही मुझे भय है, उसके लिए ये शक्ति पर्याप्त है, मुझे दे दीजिए। इंद्र बोले, तुम युद्ध में गरजते हुए एक प्रबल शत्रु को मारोगे तो सही, किंतु एक बात बता दूं, जिसे तुम मारना चाहते हो उसकी रक्षा तो भगवान श्री कृष्ण पहले से ही कर रहे हैं। जिन्हें वेदज्ञ पुरुष अजित वरार और अचिंत्य नारायण भी कहते हैं, वे जिसकी रक्षा में रहते हो उस पर इस इंद्र की शक्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा? कर्ण ने कहा, हे देवराज भले ही ऐसी बात हो तथापि मुझे एक वीर का नाश करने वाली अमोघ शक्ति दे दीजिए। जब भी मैं बैठता हूं, शस्त्र को छूता हूं, वही वो शत्रु मुझे सामने दिखता है, मैं उसी पर ये शक्ति का प्रयोग करना चाहता हूं। इंद्र बोले, एक बात और है, यदि दूसरे शस्त्रों के रहते हुए और प्राणांत संकट उपस्थित होने से पहले ही तुम प्रमादवश इस अमोघ शक्ति को छोड़ दोगे तो ये तुम्हारे ही ऊपर आ पड़ेगी। प्रमादवश छोड़ना नहीं, और प्राणांत संकट जब तक न आ जाए तब तक छोड़ना नहीं, ऐसा छोड़ दोगे तो लौट कर तेरे पर ही पड़ जाएगी। कर्ण ने कहा, ये भी आपने अच्छा कहा देवराज इंद्र, मैं बड़ा सावधान रहूंगा। आपके कथनानुसार मैं आपकी शक्ति को बड़े भारी संकट में पड़ने पर ही छोड़ूंगा, ये मैं सच सच कहता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, तब उस प्रज्वलित शक्ति को लेकर कर्ण एक पैने शस्त्र से अपने समस्त अंगों को छील कर कवच उतारने लगा है। उन्हें शस्त्र से अपना शरीर काटते और बार बार मुस्कुराते हुए देखकर देवता लोग दुंदुभियां बजाने लगे और दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार अपने शरीर से अधेड़ उधेड़ कर उन्होंने वह खून से भीगा हुआ दिव्य कवच इंद्र को दिया। दोनों कुंडलों को भी कान से काटकर उन्हें सौंप दिया। इस कर्म के कारण से वे कर्ण कहलाए। देखो अपना आज तक तो सुनते थे कि उसके कान से पैदा हुई थी, लेकिन ये कर्म के कारण से कर्ण कहलाए, कान काट दिए। इसलिए इस प्रकार कर्ण को ठग कर और उन्हें संसार में परम यशस्वी बनाकर इंद्र ने निश्चय किया कि अब पांडवों का काम सिद्ध हो गया। इसके पश्चात वे हंसते हंसते देवलोक में चले गए और वहां जाकर बड़ी प्रसन्नता से देवताओं में कहने लगे, मेरे अर्जुन का काम पूरा हो गया। जब धृतराष्ट्र के पुत्रों को कर्ण के ठगे जाने का समाचार मालूम हुआ तो वे बड़े दुखी हो गए और हाय हाय करने लगे। सारा गर्व ढीला पड़ गया। उस समय वनवासी पांडवों ने कर्ण की ऐसी परिस्थिति में पड़ा हुआ सुना तो वे भी बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो हमारी बहुत बड़ी आफत दूर हो गई। राजा जनमेजय ने पूछा, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण